भक्तों के हृदय में हमेशा ही सारे संसार का हित छुपा होता है उनके हृदय में, और चाहते हैं कि हर मानव हर इंसान का कल्याण हो, इसकी आत्मा का भी उद्धार हो जो इस मानव तन में आई है और जो अपने मूल से बिछड़ी हुई अज्ञानतावश इसको मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो। तो ये भी चाहते हैं भक्तजन के इस संसार में, इस शरीर में आकर ये आत्मा फिर से इस समोलक जन्म को यूं ही ना गंवा दे, और बीच में बाधा एक मन जो होता है ये बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। किस तरह से ये एक आत्मा का नाता परमात्मा से जुड़ नहीं पाता है, अगर कोई प्रेरित भी करता है, ब्रह्म ज्ञानियों जैसे आज भी महापुरुष निमंत्रण दे रहे हैं कि हमने भी पाया है, ये सत्य को पाया है, जो धर्म ग्रंथों वेदों शास्त्रों में जिसकी चर्चा है, जो ऐसा अविनाशी परमात्मा, जो एक रस रहने वाली परम सत्ता है, जो स्वयं भू है, जिसको कोई बनाने वाला नहीं है, जो जड़ चेतन का कारण और अचेता है, जिसके कारण ये सारी यूनिवर्स ये सारी कायनात अस्तित्व में है और इसका निज़ाम चल रहा है, तो ऐसे परमात्मा की अंश आत्मा है। आत्मा ने अपने मूल को जानना है, इसलिए महापुरुष संत ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हमने पाया है और तुम भी पा लो। ये पाने से ही ये आत्मा का कल्याण होगा, ये सत्य को जानने से ही इसकी भटकन समाप्त होगी, वरना तो इसी प्रकार से ये बंधनों में पड़े हुए ही इस जीवन के सफ़र को तय कर देंगे। इसलिए महापुरुष पहले भी विनती करते आए कि करूं विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हरी लाहा, आगे बसे सुहेला। किस जन्म में आकर वो कदम उठाना है, जिस कदम को उठाने से मंजिल मकसूद मिल जाती है, जिस मंजिल को पाने के लिए ही इस जन्म को हीरे जैसा मोलक माना गया है, बड़े भाग्य की बात मानी गई है। इसलिए ये हर किसी को ये संदेश दिए चले जा रहे हैं, चाहे कहीं पर भी बसते हैं। भाषाएं बदल जाती हैं, लहजा बदल जाता है कहने का, लेकिन संदेश तो यही है जो यूनिवर्सल है, जो केवल हिंदुस्तान के किसी प्रांत वालों के लिए नहीं है, ना ही कोई रीजन के हिसाब से कोई एशिया वालों के लिए है। एक यूनिवर्सल संदेश है, यानी कि चाहे कोई अमेरिका रहता है, चाहे अमेरिकन जिसको हम कहते हैं, वो भी पांच तत्वों का बना हुआ शरीर वाला है, ठीक है, गोरा रंग होगा, और कोई अफ्रीका में रहने वाले काले रंग की चमड़ी वाले। इसी प्रकार से भाषाएं भिन्न होंगी, कल्चर अलग होगा, रहन सहन खाने के ढंग अलग होंगे, लेकिन है तो पांच तत्वों के बने हुए पुतले सारे, और उन्हीं पांच तत्वों के पुतले में आत्मा बसती है जो, तो ये एक नूर से उपजी है। इसलिए हर किसी को ये संदेश दिए जा रहे हैं कि अपनी आत्मा का कल्याण करना है, और साथ साथ जहाँ पर ये प्राप्ति करने की प्रेरणा देते आ रहे हैं, जैसे बुल्ले शाह जी जैसे संतों ने भी कहा है कि पाया है किछ पाया है मेरे सतगुर अलख लखाया है, कि मैंने पाया है कुछ पाया है, और वो कुछ क्या है, वो कुछ कोई पदार्थों का बना हुआ नहीं है, वो कुछ कोई पांच तत्वों का बना हुआ नहीं है, वो जो कह रहे हैं कि कुछ पाया है कुछ पाया है, और फिर खुलासा करते हैं मेरे सतगुर अलख लखाया है, कि जो अलख है इसको लखा दिया है, कि अल्लो अलख ना जाई लख्या गुरु गुड़ दीना मीठा, कहे कबीर मेरी संसा नासी सर्व निरंजन डीठा। तो वो कुछ पाया है और मीराबाई भी पा लेती है वो, और वो भी कह रही है कि पायो री राम रतन धन पायो। वो भी प्राप्ति की बात कर रही है कि मैंने रतन पा लिया है, धन पा लिया है। कबीर जी कह रहे हैं कि मैंने पा लिया है, तू कहे कागज़ की लेखी मैं कहूँ आंखन की देखी, कि वो मुझे भी वो प्राप्ति हो गई है, ज्ञान मिल गया है, बोध हो गया है, ये मंजिल मकसूद तक पहुँच गया हूँ। पहले रास्तों में ही था और रास्तों में ही रहता, सारी उम्र रास्तों में ही बीत जाती, अगर ब्रह्म ज्ञानियों का संग ना मिलता जिन्होंने अलख की लखता करा दी। इस प्रकार से पाने वाले, मंजिल पर पहुंचने वाले, ये हर इंसान को संदेश देते हैं कि ये हर इंसान का ध्येय है ये इस सत्य को पाना, ये सत्य की लखता करनी, और इस प्रकार से अपनी आत्मा को आवागमन के बंधन से निजात देनी, मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करनी। ये बहुत अहम एक पहलू है जिसकी अनदेखी इंसान इस संसार के रंग मौज मेलों में इस कदर उलझकर ये करता आया है, इस अहम पहलू की अनदेखी हमेशा करता आया है। इसीलिए हर युग में, हर दौर में महापुरुषों को ये संदेश ये देना पड़ा है कि इंसान यूं ही मत इस संसार से रुखसत हो जाना, अभी बहुत काम पड़ा हुआ है। जैसे पहले भी महापुरुषों ने कहा है कि अजय एडा तेरा कम कुड़े कि कर दे लेना उस दम कुड़े जद घर आए मेहमान कुड़े, कि अभी ये बेला है, ये वक्त है। अजय एडा तेरा कम कुड़े कि अभी तो बहुत काम पड़ा हुआ है, तू सोचता है मैंने बहुत काम कर लिए, मैंने तो बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर लिया, मैंने और भी बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली, इस प्रकार से अनेकों अनेकों उपलब्धियाँ, बहुत मैदान मार लिए, बहुत मशहूर खिलाड़ी बन गया, क्या मैं अपने स्टेट लेवल का, क्या इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी बन गया, मैं बहुत ऐसा गायक मशहूर बन गया, इस तरह से एक एक करके किसी भी प्रोफेशन या कोई भी अचीवमेंट को लेते चले जाएं और इंसान सोचता है कि बहुत कुछ कर लिया, उम्र भी गिनवा देंगे कि 65 साल का हो गया हूँ, 70 साल का हो गया हूँ, वो बरस भी गिनवा देंगे कि इतने सालों में बहुत बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कुछ पाया है। लेकिन महापुरुष कह रहे हैं कि ये सब कुछ कर लेने के बावजूद, ये सब कुछ पा लेने के बावजूद अगर जो पाना था वो पाया नहीं तो फिर तो बहुत बड़ा काम पड़ा है। अजय एडा तेरा काम कुड़े, अभी तो पहाड़ जितना काम पड़ा हुआ है, बकाया है, अगर सत्य से नाता नहीं जुड़ा, अगर आत्मा ने अपने मूल की पहचान नहीं की, फिर तो बहुत बड़ा काम पड़ा हुआ है, और वो काम अधूरा रह गया, अछूता रह गया, तो फिर कुछ बनने वाला नहीं है। फिर की कर लेना उस दम कुड़े जद घर आए मेहमान कुड़े, जब समय आ गया, काल पहुंच गया, तो फिर घर आए मेहमान कुड़े, उस वक़्त फिर कुछ होने वाला नहीं है। कि कर लेना उस दम कुड़े जद घर आए मेहमान कुड़े, इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये समा टालने लायक नहीं है, ये विषयों विकारों में खचित रहकर गंवाने लायक नहीं है, इसकी अनदेखी बहुत भारी पड़ती है, और इसकी अनदेखी करने के कारण खाली हाथ आने वाला खाली हाथ ही चला जाता है, इसलिए कहना पड़ता है कि मंद भागा है। जब इंसानी जन्म मिला था तब ये कहा गया था कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, लेकिन जो काम करने के संदर्भ में इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा गया था, इसलिए कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और अगर वही काम नहीं किया तो फिर कौन कहेगा कि भाग्यवान, फिर तो ये कहना पड़ेगा कि मंद भागा। देख बंदे दे भाग, अजय सो रब ना बौड़े हो, देख बंदे दे भाग, कि देखो तो सही इसके भाग, कि इतना समय भी मालिक ने बख्शा, लेकिन फिर भी वो काम ना किया और यूं ही चला गया खाली हाथ। तो देख बंदे दे पाग कि इसके भाग्य तो देखो, इतनी उम्र बिता भी डाली लेकिन इस तरह से एक सच्चे धन से युक्त ना हुआ, कंगाल आया और कंगाल चला गया। इसलिए महापुरुष कदम कदम पर ये चेतनता देते हैं, कदम कदम पर ये एहसास करवाते हैं, आवाज़ देते हैं कि हे मानव, हे इंसान, तो इस परम पिता परमात्मा की पहचान कर ले, जिसके जिक्र तो हैं धर्म ग्रंथों वेदों शास्त्रों में, लेकिन केवल जिक्रों के कारण इसका बोध हो जाना ये नहीं माना जा सकता है। एक प्राप्ति होनी, बोध होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कबीर जी ने कहा कि पढ़ने को तो पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, और कहते हैं मैं खुद भी पढ़ता आ रहा हूँ उसी काशी नगरी में, जहाँ पर कितने ज़ोरों से पठन पाठन हो रहा है, लेकिन वो एक कदम आगे जो निकल गए, जो पा लिया, जान लिया, वो एक कदम आगे जो ले लिया, उसके कारण ही कह रहे हैं कि तू कहे कागज़ की लेखी, मैं कहूँ आंखन की देखी। क्या मुझे वो ज्ञान की दृष्टि मिल गई है, जो पहले पढ़ा था परमात्मा के गुणों से भरे हुए हैं धर्म ग्रंथ, जिसमें प्रभु परमात्मा के बारे में बहुत चर्चा है, तो वो पढ़ने तक तो पहले भी मैं आपके तरह ही आप में ही शुमार था, आप में ही शामिल था, लेकिन अब एक ऐसा कदम, ऐसी क्रांति जो जीवन में घटित हो गई है, अब मैं कहूँ आंखन की देखी, लेकिन तुम अभी भी वहीं तक ही हो, कागज़ लेखी तक ही हो, उतना कुछ ही है बस। जैसे अगर पानी, जल हम पीते हैं, तो जल पीते हैं तो इसको जब जो गैसेस का मिश्रण, जो H2O कहते हैं कि इतना हाइड्रोजन, इतनी मात्रा में ऑक्सीजन और इसका मिश्रण और एक पानी जल का अस्तित्व बन जाना, अब इतना भी कोई H2O भी जान ले कि H2O है, लेकिन बात कैसे बनेगी? बात बनेगी जब उस वो जल आता है जीवन में, जल को पी लेते हैं, अब केवल जल जल करता रहे या जल से भी आगे निकल जाए कि मैं केवल पानी पानी नहीं कर रहा हूँ साधारण लोगों की तरह, मैं तो और ज़्यादा साधारण लोगों की बनिस्पत जानकारी रखता हूँ। आप क्या जानकारी रखते हैं? मैं ये जानकारी रखता हूँ कि जिसको जल या पानी कहा जा रहा है, वो कितनी मात्रा में दो गैसेस की का मिश्रण है, ये साधारण लोग नहीं जानते, मैं जानता हूँ, मैं उनसे ज़्यादा जानकार हूँ। लेकिन इतना भी जान लेने से बात नहीं बनेगी जब तक वो जल मुख में डाला नहीं जाता है। तो इसलिए कहने का भाव क्या है कि महापुरुष संत जन वो यही संदेश, यही पैगाम देते हैं कि ये जानना ज़रूरी है आत्मा के कल्याण के लिए। वहाँ पर इस लोक की यात्रा को तय करते हुए भी ये बोध हो जाना बहुत ज़रूरी है, वरना तो ये भ्रम ऐसे ऐसे मनों में, ये अंधकार क्या प्रतीक बनकर हम जीवन जीते हैं, जब कदम कदम पर भेदभाव करते हैं, दूसरे को नीचा, अपने आप को ऊंचा मानते हैं, जहां पर अपने आप को ऊंची कुल, ऊंची जाति वाला, दूसरे को नीची जाति वाला ये कहकर दुत्कारते हैं, इस प्रकार से काले गोरे के आधार के ऊपर नफरत करते हैं। तो जिसको बोध हो गया, जिसको बोध हो गया, जिसने जान लिया कि एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, एक नूर का बोध हो गया, नूर की पहचान हो गई, फिर केवल कणकण में ही नहीं, फिर घटघट में भी देख रहा है, और फिर उसके लिए कोई भेद नहीं कि आकृति कोई भी है, स्वरूप कैसा भी है, एक सोने के बने हुए जेवर अलग अलग, कोई पैजेब बनी हुई है, कोई कंगन बना हुआ है, कोई अंगूठी है, कोई गले का हार है, लेकिन है तो सोना ही है। इसी प्रकार से माटी एक अनेक भांति कर साजी साजन हारे, ना किच पोच माटी के भांडे, ना किच पोच कुम्हारे। तो ये जब बोध हो गया फिर कहाँ गुंजाइश रह जाती है। एक सत्य का बोध होने से आत्मा का कल्याण हो गया कि आत्मा अब जान लिया निज घर को, अब उसके लिए भटकन नहीं है। लेकिन लोक की यात्रा जब तय कर रहे हैं तब भी तो अज्ञानता के अंधकार के कारण भ्रमों में पल रहे हैं और उन्हीं भ्रमों के अंतर्गत जीवन जी रहे हैं, और इसी के कारण मैं ऊंचा तू नीचा महापुरुष पहले भी कहते आए हैं कि ऊंचे कुल का जन्मया करनी ऊंच ना होए, पहले भी कहते आ रहे हैं कि जाति का गर्व मत कर मूर्ख गंवारा, इस गर्भ ते उपजे बहुत विकारा। तो जाति पाति की प्रथाएं कितनी प्रबल और इतने बड़े बड़े दावे खासकर हिंदुस्तान के, कि जितने महापुरुष संत हिंदुस्तान में आए हैं धरती का कोई भी नेशन कोई भी मुल्क ऐसा नहीं जहां इतने महात्मा गुरु पीर पैगंबर आए हों। और ये धरती है भक्ति वाली धरती है, परमार्थ बहुत यहाँ प्रबल है। एक तरफ तो इतने बड़े बड़े दावे और दूसरी तरफ कितनी घोर अंधकार के प्रतीक प्रमाण के जाति पातियों को मानकर एक दूसरे से नफरत और जाति पाति को पूरी तरह से एक्सप्लॉयट किया जा रहा है अपने स्वार्थों के लिए, ये सब तमाशे हम देख ही रहे हैं। और इसी मुल्क में ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स भी पहले हुए और गुरु पीर पैगंबर हुए और सब के सब यही बात बताते आ रहे कि क्यों इंसानों से नफरत करते हो, तुम में 6 तत्व लगे नहीं हुए हैं, दूसरे में 4 तत्व लगे नहीं हुए हैं, तुम्हारे में आत्मा है और दूसरे कोई पेट्रोल से नहीं चल रहे हैं। इस प्रकार से ऐसे ऐसे भ्रमों में पलकर तुम एक दूसरे से नफरत करते हो। तो ये भ्रम हैं, ये भ्रांतियां हैं, ये अज्ञानता के प्रमाण पत्र हैं जो अपने जीवन अपने व्यवहार के द्वारा हम खुद प्रस्तुत किए चले जा रहे हैं। ये हमारा पिछड़ापन है। काहे कि हम परमार्थी हैं? क्या केवल पाठ पूजा कर ली इसलिए परमार्थी हो गए? क्या जब तप स्नान कर लिया तो परमार्थी हो गए? इसी से मोक्ष और मुक्ति मिल जाएगी और यही गुरु पीर पैगंबरों की निगाह में हम या उनके परिभाषा के अनुसार हम पूर्ण उतर गए, उस कसौटी पे खरे उतर गए, क्योंकि हम इतनी इतनी क्रियाएं करते हैं, हम पठन पाठन करते हैं, हम माला फेरते हैं, हम तिलक लगाते हैं। ये तो पहले भी महापुरुषों ने कहा है कि कर का मन का डार दे मन का फेर। ये पहले भी कहा है कि जपनी काठ की क्या दिखलावे, लोए हृदय राम न चेते ये जपनी क्या होए। ये तो पहले भी इसको नहीं माना गया कि ये तुम इसके कारण इन क्रियाओं के कारण तुम ज्ञानी कहलाओगे या प्रभु की निगाह में तुम ऊंचे हो जाओगे या संतों की परिभाषाओं के अनुसार या वो पैमाने के अनुसार तुम पूरे उतर आओगे। इसलिए महापुरुष संत जन ये बात कह रहे हैं कि हे मानव इंसान, ये सत्य की लखता करने से ये मन के भी भ्रम मिट जाते हैं, और मन के भ्रम मिटते हैं यानी कि सारी दीवारें गिर जाती हैं। फिर कोई जाति पाति की दीवार नहीं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। फिर कोई जाति पाति के सवाल नहीं है, माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे, ना किच पोच माटी के भांडे ना किच पोच कुम्हारे, कि कुम्हार भी एक ही है। ये भी नहीं कि कुम्हार अलग अलग हैं, जिसने बर्तन बनाए ये भी नहीं कि अलग अलग कुम्हार हैं, एक नूर से उपजा यह संसार जब कहा जा रहा है तो ये जान लिया कि कुम्हार भी एक ही है। माटी एक अनेक भांत कर, मट्टी भी एक है कुम्हार भी एक है। ये नहीं कि माटी भी भिन्न है और कुम्हार भी अलग अलग हैं। ये किसी धर्म ग्रंथ में नहीं कहा कि 5 नूर से एक जग उपजा, नहीं, एक नूर ते सब जग उपजे कौन भले को मंदे। एक की बात होती आ रही, एक नूर एक रचयिता, एक की बात होती आ रही है। जब एक नूर ते सब जग उपजा, फिर कहाँ पर ये भेदभाव, कहाँ पर ये भ्रांतियाँ? तो ये एक अज्ञानता और ज्ञान में ही अंतर है। एक उजाले और अंधकार में ही अंतर है, एक बोध और एक इस तरह से एक अज्ञानता में यही अंतर है, एक मंजिल पे पहुंचना और इस तरह से एक भटकना, ये दोनों ही ऐसे एक स्थितियां हैं। तो महापुरुष संत जन प्रेरणा देते हैं कि हमने लोक भी संवारना है और परलोक भी सुहेला करना है। परलोक का नाता सीधा सीधा आत्मा से है ही है, क्योंकि ये पांच तत्व परलोक कहाँ जाएं? तो ये आत्मा का संवारना, आत्मा को मंजिल का मिलना, तो परलोक सुहेला करना और लोक की यात्रा जो हम तय कर रहे हैं, तो ये भी संवर कर तय करें, ये यात्रा भी तय करें तो नफरत करते हुए नहीं, ये संकीर्णताओं से युक्त होकर नहीं, भेदभाव करते हुए नहीं, ये लोक की यात्रा भी हम तय करें तो मिलवर्तन से, प्यार से और इस प्रकार से ऐसे ऐसे एक गुणों से युक्त होकर इस लोक की यात्रा को तय करें, तो तभी माना जाता है कि लोक और परलोक ये दोनों ही सवर गए, दोनों ही जहानों की बाजी ये जीत ली गई। वरना तो जैसे पहले कहा कि वही बात के खाली हाथ आया, खाली हाथ चला गया, वही बात के वाकई ही इस जन्म का कोई मोल नहीं डाला और इस तरह से कौड़ी के भाव ये जन्म गंवा डाला, तो कहाँ पर दोनों जहानों की बाजी जीतने की बात और कहाँ पर दोनों जहानों की बाजी हारने की बात, कहाँ पर एक प्राप्ति करके मालामाल होने की बात और एक सांसों रूपी पूंजी भी गंवा डाली, एक पूंजी मिली उस पूंजी में इजाफा करने की बेला तो वो पूंजी भी जाती रही हाथों से। जैसे कबीर जी जैसे महापुरुषों के कथन कि ये संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा आए, और चातुर माल चौगना किया और मूर्ख मूल गवाए, कि जो चातुर बन जाते हैं, जो समझ से काम लेते हैं, जो जागृति प्राप्त कर लेते हैं, तो कहते हैं कि उन्होंने तो माल चौगना किया, कि उन्होंने तो इजाफा कर लिया, लेकिन मूर्ख मूल गवाया। लेकिन जो नादान बना रहता है, जो अनजान बना रहता है, उसने मूल भी गंवा दिया है। इसलिए महापुरुष संत जन ये आज भी यही पैगाम दे रहे हैं, जो सतयुग में दिया गया, जो त्रेता में दिया गया, जो द्वापर में दिया गया, और कलयुग में भी यही पैगाम दिया जा रहा है, यही संदेश दिया जा रहा है कि हे इंसान, ये अवश्य तुम ये सत्य का बोध हासिल करो और जानो जीवन जीने का सलीका, और इस प्रकार से जीवन जब जियोगे, एक रोशनी से युक्त होकर, भ्रमों से निजात पाकर, तो वो फिर जीवन जो जिया हुआ होगा वो वरदान होगा, वो कल्याणकारी होगा, वो शोभा तुम्हें प्रदान करेगा, तुम औरों के लिए भी वरदान बन जाओगे, क्योंकि अब नफरतों को कोई स्थान नहीं रहा है, अब प्यार से युक्त होकर जी रहे हो, दीवारें ढह चुकी हैं, दीवारें गिर चुकी हैं, ना जाति की दीवार अब रही, ना काले गोरे की दीवार अब रही, ना कोई मज़ो मिल्लत की दीवार अब रही, कोई दीवार बाकी नहीं रही, अब नफरत नहीं रही, अब प्यार से जी रहे हैं, प्यार से जी रहे हैं तो औरों के लिए वरदान बन रहे हैं, धरती के लिए वरदान बन रहे हैं। तो इस प्रकार से यही प्रार्थनाएं जो की जा रही थी आज भी सत्संग में, कि ना वैर न हो, ना तकरार हो, और सभी प्यार से जिएं, मिलवर्तन के भाव से युक्त होकर जिएं, और इस तरह से एक स्वर्ग सा वातावरण ये हमें चारों तरफ देखने को प्राप्त हो, कोई एक दूसरे को नीची दृष्टि से ना देखे, एक दूसरे के प्रति सत्कार का भाव हो, किसी के प्रति मन में मलिनता ना हो, किसी का बुरा मांगा ना जाए, किसी का बुरा सोचा ना जाए, और भलाई भला मांगा जाए, भलाई भला सोचा जाए, और भलाई करने के लिए ही अपने योगदान ये दिए जाएं, यही एक संत महात्मा, ये भक्तजनों की ये प्रार्थनाओं के साथ साथ ये उनके संदेश भी रहे हैं और उनकी एक देन भी, उनकी चाल भी यही रही है इन्हीं के अंतर्गत। तो दास अधिक और ना कुछ कहते हुए सबके लिए अंत में प्रार्थना करेगा कि दातार कृपा करे, सभी को शक्ति दे, सामर्था दे, जो इस सत्य की तरफ सभी के कदम बढ़ें, ये एहसास हो, जागृति आए, ये मंजिल पे पहुंचना सबका हो, और इसी तरह से जो जीवन की यात्रा है सभी प्रेम पूर्वक तय करें, भक्ति भावना से युक्त होकर भक्ति का नाम का रंग इस मन के ऊपर चढ़ा रहे, और इस तरह से जहाँ पर घरों का संवरना हो, मुल्क का मजबूत होना हो, और इसी प्रकार से विश्व में भी चारों तरफ सुकून चैन हो। सात संगत जी धन्य।